ज्ञानाञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मया ददाति स्वपदान्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। कुछ ही दिनों में आप मनाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, और कल आप मनाने वाले हो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का व्यास पूजा। सो इस तरह से अनेक फेस्टिवल्स आते हैं हमारे कृष्ण भक्ति में। कल उनका तिरुभाव भी है, गौर गोविंद महाराज का। और कल हमारे टीओपी टेंपल का जो डीटी डिपार्टमेंट का जो फ्लोर है, डीटी किचन, डीटी ऑर्नामेंट्स, पुजारी डिपार्टमेंट का, उसका ओपनिंग है टीओपी में। सो चैतन्य महाप्रभु के विषय में हमने दो प्रसिद्ध सॉन्ग गाए, दोनों ही वासुदेव घोष के द्वारा लिखे गए थे। हमने ऐसे ही चुना था, लेकिन फॉर्चुनेटली दोनों ही वासुदेव घोष के द्वारा थे। पहले सॉन्ग में हमने गाया था कि गौरांगा तुम्हें मोरे दया ना छाड़ी हो। एक चैतन्य महाप्रभु आप कृपा करके अपनी दया मुझसे वापिस मत ले लेना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें विशेष कृपा करके ये हरिनाम दिया है, ये आंदोलन में स्थान दिया है। भगवान के हम अंश हैं, और अंश होने के कारण हमारा कर्तव्य ये है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके आदेशों का पालन करें, उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जिए। लेकिन लोग कष्ट में है, लोग दुखी है, इसलिए है क्योंकि लोग अपनी इच्छा से जीवन जीना चाहते हैं। हम लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम हमारी अपनी इच्छा से जीवन जीना चाहते हैं। हम हमारी इच्छाओं से आसक्त है, हम हमारी मनोस्थिति से आसक्त है, और ये रोग ग्रस्त अवस्था के कारण, जैसे कोई व्यक्ति को हम कई बार उदाहरण देते हैं कि जब कैसे किसी को बुखार होता है तो आप उसको भोजन दो तो उसको पसंद नहीं आता है ना। अगर आपको कभी बुखार हुआ हो तो आपको याद होगा कि अगर आपको कोई समोसे ला के देता है, सैंडविच ला के देता है, तो आपको कुछ रुचि नहीं होती उसमें। जब आपको बड़ा बुखार है तो आपको खाने के बाद भोजन भी आपको कड़वा लगता है ना, आपको पसंद नहीं आता। और स्वाभाविक रूप से जो बीमार होता है, आप देखा है कि जनरली एक सप्ताह 10 दिन में पतला हो जाता है आदमी थोड़ी देर में, है ना, क्योंकि वो भोजन उसका बंद हो गया ऑलमोस्ट, वो नहीं खा पा रहा है। और जैसे उसकी दवाइयां काम करती है वो ठीक होने लगता है। फिर डॉक्टर भी क्या कहता है कि जब आपका भोजन नॉर्मल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप ठीक हो जाओगे, है ना, ऐसा कहते हैं डॉक्टर लोग भी। सो हम बीमारी अवस्था में होने के कारण कृष्ण भक्ति के विषय में हम लास्ट प्रायोरिटी में सोचते हैं, अंतिम प्राथमिकता देते हैं कृष्ण भक्ति को। हमारे जीवन में 24 घंटा है एक दिन में, ये 24 घंटा कभी 26 होगा? ये तो 24 ही रहने वाला है। अभी प्रश्न ये है कि हम कौन सी चीज को प्राथमिकता देते हैं, हम कौन सी चीज को पहले करना चाहते हैं और कौन सी चीज को बाद में करना चाहते हैं। और अक्सर ऐसे स्वाभाविक जनरली ऐसा देखा जाता है कि हमारी आदत ऐसी है कि हम आध्यात्मिक वस्तुओं को सबसे अंतिम प्राथमिकता देते हैं, सबसे अंतिम। ये तो कोई ये नहीं होगा तो थोड़ी सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाएगा। आजकल तो कोई छोटा केस होता है तो वही सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो हम ऐसा सोच के बैठे हैं कि अगर मैं भगवान की सेवा नहीं करूंगा या माला का जप नहीं करूंगा या ग्रंथों को नहीं पढ़ूंगा तो थोड़ी अचानक से आज रात को यमराज जी मेरे सपने में आएंगे, रात को नींद से उठेंगे, उठ तेरा टाइम खत्म हो गया चल, ऐसा थोड़ी होने वाला है। इसलिए हमें डर नहीं है, हमें किसी चीज का डर नहीं है, हम इसके लिए गंभीर नहीं है। थर्ड क्लास कैटेगरी का विद्यार्थी वो होता है जिसको मार के पढ़ाया जाता है ना। आप तो टीचर, आपको पता है, एकदम थर्ड क्लास होता है विद्यार्थी, उसको दंड दे के पढ़ाया जाता है ना, उसको दंड देना पड़ता है। जो सबसे अच्छा विद्यार्थी होता है वो अपने आप पढ़ता है, लेकिन जो एकदम थर्ड क्लास होता है उसको एक हाथ में लकड़ी रखनी पड़ती है पढ़ाने के लिए। प्रभुपाद जी भी अक्सर कहते थे कि मैं एक हाथ में लकड़ी रखता था और एक हाथ में भागवतम, भागवत को पढ़ो, भागवत को सुनो, अगर तुम्हारे पास ये तुम ये नहीं कर सकते तो मेरे दूसरे हाथ में क्या है, लकड़ी छड़ी है, उसके उससे पिटाई होगी तुम्हारी। सो कलयुग में अधिकतर हम थर्ड क्लास कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। जब तक हमें कोई प्रकृति के द्वारा कोई तमाचा नहीं लगता है तब तक हम सुधरना नहीं चाहते। जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाती है तब हमें लगता है कि काश मैंने भगवान की सेवा पहले कर ली होती, काश मैंने माला का जप पहले कर लिया होता तो आज मेरी सिचुएशन कुछ और होती। तो इसलिए भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि ये कृपा जो हमें प्राप्त हुई है ये कृपा बार बार नहीं मिलती है। 84 लाख योनि में से केवल मनुष्य को यह अवसर प्राप्त होता है और इससे भी अधिक आपके 4,32,00,000 साल ये सब मिला करके आपका ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना। तो इतने सालों में एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं और उसमें भी फिर हम क्या करते हैं, 43 लाख वर्षों का एक चतुर्युग होता है, ऐसे 1,000 मल्टीप्लाई करो तो ज्यादा होगा शायद। सो इतने सालों में एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं और वो चैतन्य महाप्रभु केवल ये समझो कि करोड़ों साल में 500 साल की क्या वैल्यू है ना, करोड़ों साल में 500 साल बस चैतन्य महाप्रभु बस 500 साल पहले ही प्रकट हुए थे और उन्होंने हमें ये कृपा दिया है कि हम उनकी उनकी बात को सुन करके वो हमें आनंद देना चाहते हैं, हमें सुखी करना चाहते हैं। वो हमें रोता हुआ नहीं देख सकते, वो हमें कष्ट में नहीं देख सकते। इसलिए वासुदेव घोष कहते हैं कि आप कृपा करके अपनी दया वापिस मत ले लेना मुझसे, आपने दया किया है तो फिर ऐसा ना हो कि कल आप बोलो कि तुम तो लायक नहीं हो, तुम दया वापिस ले लेते, ऐसा मत करना। मैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ त्याग दूंगा, वासुदेव घोष तो त्यागने को तैयार है, हम है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन वासुदेव घोष तो कहते कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा, ये कुल वो कुल आपके लिए मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूं, फिर हमारी अपनी इच्छाओं का क्या मूल्य। जब कोई व्यक्ति सब कुछ त्याग सकता है तो इच्छाओं का क्या मूल्य है कि मेरी ये इच्छाएं है, मेरी ये आसक्ति है, कितना सुख भोग लेंगे हम संसार में, क्या अच्छा खाना ये सुख का डेफिनेशन है कि हम रोज पिज्जा खाते हैं या बर्गर खाते हैं, ये सुख का डेफिनेशन है, क्या अच्छा इंद्रिय भोग करना ये सुख का डेफिनेशन है। क्या आप घंटों भर सोते रहना ये सुख का डेफिनेशन है? ये तो पशुओं के समान है, तो पशु के लिए है ये सब, मनुष्य के लिए नहीं है। तो सुखी करने के लिए चैतन्य महाप्रभु हमें बार बार कह रहे हैं, स्वयं कहते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से कहते हैं कि कब तक माया की गोद में सिर रख के सोओगे, अब तो जागो, अब तो अपनी आंखें खोलो। हमारी आंखें खोलने के लिए क्यों बार बार कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि हम सुनते हैं आप, हम सब कितने सालों से कृष्ण भक्ति में आते हैं, कई लेक्चर आपने सुने हैं, पढ़ते हैं बुक्स में, तो हम सुनते हैं लेकिन हम अनसुना कर देते हैं। इधर से जाता है और इधर से बाहर, पूरा टनल, सुनते हैं, सुनते समय अच्छा लगता है लेकिन जैसे ही भक्तों की संगति से दूर होते हैं हम जैसे थे वैसे हो जाते और इच्छा नहीं करते परिवर्तन की। ये नहीं सोचते कि समय जा रहा है, आज तुम लोग जवान हो, आपको क्या लगता है आपको ऐसे जवान 20 साल के बाद आपके सिर पे काले बाल होंगे क्या? है ना, मैं तो ऐसे ही देखो, मेरे तो है ना? ऐसे ही है। आपको क्या लगता है कि आप हमेशा जवान रहेंगे? नहीं, आप में अभी जो शक्ति है वो शक्ति हमेशा बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। तो इस समय बढ़िया कीमती वस्तु है, वो भाग रहा है, वो बड़ी तेजी से भाग रहा है और इसलिए अगर इसका सदुपयोग नहीं किया जाए तो बाद में बड़ा पछताना पड़ेगा। अगर हम जीते जी नहीं पछताएंगे तो मरने के बाद पछताएंगे कि मेरे लाइफ में कृष्ण भक्ति का अवसर आया था, मैंने उसको यूज नहीं किया और आज मुझे गधा बनना पड़ा, आज मुझे कुत्ता बनना पड़ा। तो बाद में पछताना, या बाद में चलो मनुष्य बन गए तो वापस इस घोर कलयुग में दोबारा जन्म लेना, ये कोई आसान काम है? आप अभी कलयुग से त्रस्त आ गए हो तो आपको लगता है कि कुछ सालों के बाद आप फिर से जन्म लोगे तो आपके लिए बड़ी सुखमय सुविधा होगी? कुछ नहीं होगा, और प्रॉब्लम्स, और अलग अलग प्रकार के कोरोना वायरस आएंगे, और अलग और इतनी सारी गाड़ियां आएंगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर फ्लाईओवर बनते जाएंगे। तो क्या आपके लिए सुख की सुविधा है ये? क्या ये अच्छा जीवन है? हमें लगता है कि सब कुछ हमारे लिए सब व्यवस्था हो जाती है, साइंटिस्ट लोग बड़े महान है, कुछ नहीं कर सकते, हाथ जोड़ के खड़े रह जाते, कुछ नहीं कर सकते वो लोग। इसलिए वो वासुदेव घोष बार बार कह रहे हैं कि वासुदेव घोष चरण पकड़ करके ये प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके मुझे अपने चरण की छाया में रखना हमेशा के लिए, हमेशा चरण की छाया में रखना, अपना बोल करके कि कोई अगर माया कभी आए या फिर यमराज जी आए या फिर कोई भी आए तो उसको बोल देना, महाप्रभु बोल देंगे उसको कि इसको मत परेशान करो, ये मेरा दास है, बस इतना बोल दे, अपनार बोलिए, अपनार बोलिए, एक बार बोल दे कि ये मेरा एक छोटा दास है, उसको ज्यादा कुछ आता नहीं है लेकिन दास बनना चाहता है तो दास बना दिया मैंने उसको, इतना ही बोल दे तो भी काफी है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। भक्तिवान ठाकुर तो कहते हैं कि मुझे चरण की धूल ही बना दो बस, दास तो बहुत बड़ी सम्मान की बात है, मुझे चरण की धूल ही बना दो बस। महाप्रभु को प्रार्थना करते, दूसरे सॉन्ग में हमने गाया था वासुदेव घोष का कि अगर चैतन्य महाप्रभु हम पर कृपा नहीं करते तो आज हम कहां होते, आप सोचिए कहां होते हम आज, वही घिसा पिटा जीवन जी रहे होते, वही सिनेमा का लाइफ, रेस्टोरेंट में खाना, नाइट क्लब डे क्लब में घूमना, वही मांसाहार नशा जुआ व्यभिचार वही करते, और क्या करते? बाद में कहते हैं कि वासुदेव घोष की गाओ गाओ पुनः गौरांगे रघुण, इसलिए हे जीव बार बार चैतन्य महाप्रभु के गुण गाओ। ये ऐसे व्यक्ति है जो संसार में इनसे अधिक दयालु और कोई मिलेगा नहीं आपको, कि आपको 1000 बार 10000 बार 10 लाख बार क्षमा करने को तैयार है, अनंत बार क्षमा करने को तैयार है। आप गलती करोगे तभी भी आपको क्षमा कर देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु अवतार है, इतने दयालु स्वरूप है, और वो प्रेम बांटना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, लेकिन हम लेना नहीं चाहते, वो देना चाहते हमें। तो भगवान का जो भक्त होता है वो ये प्रार्थना करता है कि शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि गौरांग का नाम लेने से ही हमारे रोंगे खड़े हो जाने चाहिए, हृदय पिघल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है हमारा। तो वासुदेव खोस कह रहे हैं कि मेरा हृदय कैसे पत्थर का बना हुआ है, और मुझे ये नहीं पता कि मैं अभी तक जीवित क्यों हूं, कोई परिवर्तन ही नहीं है मेरे जीवन में, तो क्या करना चाहिए, परिवर्तन के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या हम में से ऐसा कोई मानते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में इंप्रूवमेंट का स्कोप है, इंप्रूवमेंट करने का स्कोप है, हम ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ऐसा कि ये इंप्रूव हो सकता है और कृष्ण भक्ति और हो सकती है, भगवान की सेवा में हम शरणागत हो सकते हैं भगवान के, या फिर मैं माला का जप अच्छे से कर सकता हूं या बढ़ा सकता हूं, ये हो सकता है हमसे, या नियमित रूप से कर सकता हूं, ये हो सकता है हमसे? अगर ये हो सकता हो तो अभी तक हम क्यों नहीं कर रहे? कौन सी चीज ऐसी है जो हमारी रुकावट है, उसको ढूंढो और उसको उठा के पटक दो, वो आपका शत्रु है, उसको मत रखो अपने पास, और ढूंढो कि कहां से आपको और बल मिलेगा इस चीज को पकड़ने के लिए, कहां से ये बल प्राप्त होगा, ढूंढो उसको, जहां से भी बल प्राप्त होता है उसको कस के पकड़ लो, जहां से भी बल प्राप्त होता हो, और समय गवाओ नहीं ऐसे, क्योंकि बड़ा कीमती होता है ये, इसको गवाओ मत। क्या क्या ऐसे उपाय किए जा सकते, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे मेरा इंप्रूवमेंट हो सकता है? जो भक्त अपने इंप्रूवमेंट से संतुष्ट हो गया हो उसकी तो कोई प्रगति ही नहीं हो सकती, इसलिए अपने इंप्रूवमेंट से संतुष्ट नहीं होना और अपने प्रगति से गर्वित नहीं होना। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है तो पंख लगा के उड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति में हम लोग कई बार बहुत अच्छा ग्राफ ऊपर चला जाता है, सब कुछ अच्छा, भोग लगा के खाते, प्रसाद खाते, माला का जब अच्छा हो जाता है, ग्रंथों को पढ़ लेते, कथा सुन लेते, सब कुछ एकदम टॉप। लेकिन कभी कभी ग्राफ एकदम डाउन चला जाता है, कुछ भी नहीं। तो ये हमारे जीवन में निरंतर होता रहता है, इसलिए भगवान का जो भक्त होता है, विशेष करके जो लोग प्रचार करते हैं, उन लोग को बड़ा सावधान रहना चाहिए। भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, अच्छा बेटा किसको बोलते हैं? वही बेटा सबसे अच्छा है ना, कि जो पिता का काम खुद करना शुरू करे। जब बच्चा छोटा होता है तो पिता उसको हेल्प करते हैं, राइट? लेकिन जब पिता देखते हैं कि बच्चा अब अपने आप से करने के योग्य है, तो फिर क्या करते हैं अधिकतर के समय, आप क्या देखते हो, खुद का बिजनेस भी बेटे को दे देते हैं, है ना, कि बेटा आप तुम संभालो इस बिजनेस को, है ना, और फिर पिता के काम में हाथ बटाते, थोड़ा काम वो कर लेते, थोड़ा काम ये कर ले, ऐसा होता है? आप देखा है ऐसा? सच बात है, गलत बात है? यह ऐसा होता है, ये कॉमन सेंस है, होता है ना ऐसा? तो अगर हम भगवान के पुत्र हो, है कि नहीं, हम भगवान के पुत्र है या नहीं है, पुत्र या पुत्रियां है कि नहीं, भगवान हमारे परम पिता है कि नहीं है? अगर है तो क्या हमारा, जैसे बेटी होती है तो आप लोग जब आप थोड़े से बड़े हुए या जवान हुए तो आप जब अपने घर पे थे तो आप क्या करते थे, आपकी मदर जो थे उनका काम आप करना शुरू कर दिया था, राइट? वह काम आप करना, उनको आराम देना शुरू कर दिया था, तो यही बात, ये इतनी साधारण सी बात है। अगर भगवान हमारे परम पिता है तो उनका कार्य हमारा कार्य क्यों नहीं हो सकता? और उनका कार्य है जाय देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, ये उनका कार्य है। पृथ्वी से आचे जता नगरादिक राम सर्वत्र प्रचार हो, ये उनका कार्य है। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए अगर भक्त थोड़ा सा भी किसी के अंदर थोड़ा एक चिंगार भी उसको मिल जाती है किसी के हृदय में, क्यों कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर सकता है, थोड़ी चिंगार भी अगर उसको दिख जाती है तो उसको क्या करता है, चिंगारी को जलाने के लिए क्या करना पड़ता है, हवा डालनी पड़ती है ना। अगर आप समझ लो कि लकड़े में थोड़ा सा, तो उसको क्या कर डालना, हवा डालना पड़ता है। तो भक्त उसको हवा डालता है, कुछ लोग कोई दूर से ऐसा देखेंगे क्या कर रहा है भक्त, ये तो एकदम होपलेस केस है, प्रभु जी ये कभी भक्त बन ही नहीं सकता। अच्छा, ये कभी भक्त बन ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि सभी तो भगवान के पुत्र है या पुत्री है, तो वो भक्त क्यों नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते भक्त, सभी भक्त बन सकते हैं, हवा डालनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी को तिरस्कृत करना यह भगवान का स्वभाव नहीं है, किसी का तिरस्कार करना यह भगवान का स्वभाव नहीं है, और भगवान का स्वभाव नहीं है इसलिए भक्त का स्वभाव भी नहीं है किसी को तिरस्कार नहीं करना, कोई गमे कैसा भी हो, कैसा भी हो, कोई भी हो, उसका तिरस्कार नहीं करते। क्योंकि भगवान किसी जीव का तिरस्कार करे, आप कभी सुना है ऐसा, किसी का तिरस्कार नहीं, तो भक्त क्यों करेंगे तिरस्कार, नहीं प्रभु जी ये नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, तो मैं आता नहीं इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो, तो सब कुछ सकता है। सो ये स्वयं कृष्ण इस प्रकार का इंस्पिरेशन दे रहे हैं, वो सबको कष्ट से निकालना चाहते, स्वयं भगवान सबको कष्ट से निकालना चाहते हैं, आप कौन होते हो उनको रोकने वाले, उल्टा आपको उनकी सहायता करनी चाहिए कि किस तरह से उनका कार्य आसान हो जाए। तो इसलिए भक्त जो होते हैं, द डिवोटीज एज फेथफुल सन्स एंड डॉटर ऑफ द लॉर्ड वर्क टू ब्रिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णस डिजायर फॉर रिकवरिंग हिज लॉस्ट चिल्ड्रन, उनके जो खोए हुए बेटे बेटियां हैं भगवान के। कई बार हम बता दें आपको कि आपको क्या पता कि कृष्ण उन लोग के लिए कितना दुखी है, आपको क्या पता, जिस समझ लो कि एक बच्चा, एक माँ है उसके चार बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, उसमें से एक बच्चा तो तंदुरुस्त है लेकिन दूसरे बच्चे को अगर कैंसर है और वो कुछ समय में मरने वाला है, तो बाकी तीन बच्चों को क्या पता कि माता को क्या बीत रही होगी, है ना, आप समझ सकते हो इसको, आपको क्या अनुमान लगा सकते हो आप। इसलिए हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि भगवान दूसरे जीवों के लिए कितने दुखी है, इसलिए तो भगवान महरिदास को कह रहे हैं कि इन लोग का क्या होगा, इन लोग का उद्धार कैसे होगा। और सोचो कि ऐसे अगर कोई ऐसा बिछड़ा हुआ बच्चा है या बीमार अवस्था में कोई बच्चा है, उसका चार बच्चे है माँ के, उसमें से एक बच्चा कोई इलाज ढूंढ के लाता है, तो कितना प्रसन्नता होता है, आप जानते हो, सुपरफिशियल एक प्रसन्नता होती है और हृदय से एक प्रसन्नता होती है। तो माँ हृदय से प्रसन्न होती है या सुपरफिशियल होती है, हृदय से प्रसन्न होती है। इसी तरह से जो प्रचार करने वाला भक्त होता है उसके प्रति भगवान हृदय से प्रसन्न होते हैं, भगवान अंतर से प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के लिए उनको कुछ अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ती कि मैं तुमसे प्रसन्न हो गया, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ता, ये भगवान और भक्त का आपस का मामला है। भगवान का, भगवान प्रसन्न होते हैं भक्त समझ जाता है और भक्त की इच्छाओं को भगवान समझ जाते हैं। जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त मेरी कृपा को वितरित कर रहे हैं तो वो आप पर विशेष कृपा करते हैं, विशेष कृपा करते हैं। अगर कोई भक्त प्रचार नहीं करता तो वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता, ये स्पष्ट है। प्राणाचार से हेतु प्रचार, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव है कल, उन्होंने जो सॉन्ग हमने अभी कुछ दिनों पहले गाया था उनके विषय में, वो क्या कहते हैं, जिनमें प्राण है, प्राण आश्रितार, जिसमें जिनमें प्राण है, केवल वही लोग भगवान का गुणगान गा सकते हैं या प्रचार कर सकते हैं। अन्यथा केवल हमारी ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य को पालन करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति बहुत स्लो हो जाती है। हो सकता है कभी हम माया के शिकार बन जाए। आप कहेंगे प्रभु जी हमसे तो प्रचार नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, अगर आपसे प्रचार नहीं होता तो उनकी सहायता करो कि जो प्रचार कर रहा है, उनकी सहायता करो, उनको असिस्ट करो। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो उनको पूछो कि मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं। तो इस तरह से अपने आप को जोड़ सकते हो कृष्ण भावनामृत में। श्री प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के विषय में जो रूप गोस्वामी ने जो श्लोक लिखा है ददाति प्रतिगृहणाति, उसको श्री प्रभुपाद जी ने इसमें एंगेज कर अरेंज ये जोड़ करके बताया था कि किस तरह से इस्कॉन ये छह प्रकार की चीज भक्तों के साथ होती है। धन देते हैं लोग, आध्यात्मिक संस्था को धन देते हैं, इस्कॉन को धन देते हैं, तो उसके सामने हम उनको ग्रंथ देते हैं या मैगजीन्स वगैरह सब देते हैं या कुछ भेंट देते हैं। और जब फूड फॉर लाइफ है या प्रसाद, एवरी संडे को आप प्रसाद मंदिर में बांटा जाता है, खिचड़ी भी होता है और भोजन प्रसाद भी दे दिया जाता है, राइट, फेस्टिवल्स में भी आपको हमेशा प्रसाद मिलता है। तो इस्कॉन सब भक्तों को खिलाता है, सबको, कोई भक्त है नहीं भक्त है, कोई हो, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। लोग कई बार लोग बोलते रहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कर, भाई ये सब बात की बात है, पहले ये देखो कि ये मंदिर कितने लोग को रोज खिला रहा है, ये क्या आप हम या आप कर सकते हैं ये काम कि इतने लोगों को रोज खिलाना, पूरे संडे, एवरी संडे, महीने के चार संडे को खिलाना रोज सब बक्स जितने लोग आते हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। फिर भूंगते भोजेते ददाते प्रतिगृहणाति गुह्यम् आख्याति। कई बार लोग आते हैं अपने मन की बात बताते हैं कृष्ण भक्तों को, यू नो, कई बार हमने देखा है कि बाहर अनजान भक्त, अनजान व्यक्ति होता है, भक्त नहीं होता है, अनजान होता है, लेकिन बेचारा दुखी होता है या कुछ प्रश्न होता है तो भक्तों के पास आते हैं और कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर मेरे ये मेरे यू नो मेरी अपनी बात है, तो आप गुह्यम् आख्याति, मन की बात बताते हैं और भक्त भी उनको उसका सॉल्यूशन ला कर देते हैं। यदि भी उसको भक्त को उससे कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी भक्त का इच्छा होता है कि किस तरह से लोगों की सहायता की जाए और किस तरह से सभी सुखी रहे ना, क्या बोलते हैं, हाँ, सर्व सुखी नो सर्वे भवंतु सुखी ना सर्वे संतु निराम, सब सुखी हो, भक्त ऐसा चाहते हैं सभी सुखी हो, कोई भी दुखी क्यों होना चाहिए, सभी सुखी होना चाहिए ना, एक रो रहा और एक हंस रहा है तो क्या मजा है, सभी सुखी होने चाहिए, ये भक्त का स्वभाव होता है। तमसो मां ज्योतिर्गमा, अंधकार से उजाले की ओर आओ, प्रकाश की ओर आओ, ज्ञान की ओर आओ, कब तक अंधकार में पड़े रहेंगे हम, प्रकाश की ओर आओ। तमसो मां ज्योतिर्गमा मृत क्या है, तमसो मां ज्योतिर्गमा मृत्युर्मा अमृतम गमा, है ना, ये मृत्यु संसार में हम गिरे हुए हैं, सबको मरना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, इससे अच्छा है कि भगवान के चरणों में अपना स्थान बना लो, अपना वापिस अपना स्थान, तो फिर ये बार बार का जन्म और मरण खत्म हो जाएगा, बार बार मरना, बार बार बूढ़ा होना, बार बार रोग आना, ये सब खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये शरीर बहुत अच्छा सौदा है, ये शरीर आपको क्या इसमें कष्ट नहीं होता है, ये शरीर में हजारों रोग है, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कि जिसको 100% परफेक्ट बॉडी मिला हो, कोई नहीं मिलेगा ऐसा 100% परफेक्ट बॉडी, कोई नहीं मिलेगा, किसी को कोई रोग होगा, किसी को कोई रोग होगा, कोई छोटा होगा, कोई नाटा होगा, कोई लंबू होगा, कोई धनवान होगा, कोई बुद्धिशाली होगा, कोई मूर्ख होगा, कोई गुस्सा वाला होगा, कोई शांत होगा, इतना 100 वेराइटी, 1000 अनलिमिटेड वेराइटीज। तो ये शरीर कोई ऐसा कोई अच्छा सौदा नहीं है। अभी जो मिला है वो मिल गया, छोड़ो अभी जो चिंता मत करो, जो मिल गया वो मिल गया, इसका उपयोग कैसे किया जाए वो सोचो बस। जो मिल गया उसके इसके लिए सोचो मत अब, हाय हाय मेरे पास तो ये सुविधा नहीं है, छोड़ो भाई ये क्या सोच रहे हो, फालतू का विचार क्यों कर रहे हो, जो है उसका उपयोग कैसे किया जाए उसको सोचो। इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। सो आगे हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में गुणगान करेंगे नेक्स्ट एक दो वीक, उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट हमारा आज कंटिन्यू ही रहेगा, आज भी हमने उसके विषय में चर्चा किया था। सो सब भक्तों का गंभीर होना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमसे दूर ना चली जाए, वो कृपा करना बंद ना कर दे हम पर, ऐसे करेंगे नहीं वो। लेकिन आप सोचिए कि अगर कृपा करना बंद कर दिया तो क्या करेंगे आप। सो वी स्टॉप हियर, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए।